श्री गिरिराज गोवर्धन की जय हो। तो द्रोणगिरी में, द्रोणगिरी के पुत्र के रूप में गोवर्धन का जन्म हुआ और फिर गोवर्धन के सुंदर दर्शन से सब प्रभावित हो गए। गोवर्धन के अंदर सब जड़ी बूटियाँ, झरना, बैठने की जगह, गुफाएं, रत्न, जड़ी, सब फल फूल, हरी ग्रास सब उपलब्ध था। तो काशी से एक ऋषि आया, उसका नाम था पुलत्स्य मुनि। तो पुलत्स्य मुनि के काशी में पर्वत नहीं है और सब जानते हैं कि पर्वत पर जप करना बहुत अच्छा रहता है, मोर देन लैंड। इफ यू मेडिटेट ऑन द माउंटेन, इट इज मच 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 बेटर एंड फेवरेबल। तो उसको ये पर्वत देख के बहुत अच्छा लगा। तो उसने क्या किया, द्रोणगिरी यानी उसके पिताजी को बोला कि मुझे ये आपका बेटा चाहिए, मैं ले जाऊंगा उसको और काशी में रखूंगा और उसके ऊपर भजन करूंगा। तो ये सुनकर द्रोणगिरी बेहोश हो गए, उतना प्रेम था गोवर्धन के प्रति। तो साधु गोवर्धन को पूछ रहे हैं, गोवर्धन को मांग रहे हैं, ये सोचकर बहुत परेशान हो गए। लेकिन साधु का कहना मान टाल नहीं सकते, इसलिए फिर बाद में द्रोणगिरी मान गए कि हमारे बेटा जाएंगे। और फिर पुलत्स्य मुनि ने गोवर्धन को उठाया और वो चलने लगे। गोवर्धन ने एक कंडीशन रखा उनको कि आप मुझे जहाँ पर भी रखोगे फिर मैं वहाँ से नहीं हिलूँगा, यू हैव टू कंटिन्यूसली कैरी मी। अगर आपने मुझे कहीं रखा बीच में तो मैं वहीं बस जाऊँगा, फिर आगे नहीं चलूँगा। तो उन्होंने कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इस तरह से हिमालय से निकले वो और काशी की ओर जाने लगे। तो जब वो यहाँ से गुजरने लगे तो मुनि जो है पुलत्स्य मुनि, वो बड़े कंट्रोल वाले मुनि थे। मतलब उनको अपने सारे वेगों पर कंट्रोल था, प्यास, भूख, निद्रा, यूरिन, स्टूल, ये सब होता है ना, अर्जिस, ये सब उसके ऊपर उनका कंट्रोल था पूरा। कभी भी इसी इस वेग के वश में नहीं आए कभी वो, ही वॉज नेवर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस अर्जिस। लेकिन अचानक जब वो यहाँ पर आए तो उनको यूरिन का वेग आया, लघु शंका, तो उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने ना सोचा, इधर उधर देखा नहीं, कुछ नहीं, झट से मन पर्वत को नीचे रखा और तुरंत गए और तुरंत लघु शंका को विश्राम करके आ गए और वापस उठाने का प्रयास किया तो उसको उठा नहीं पाए। उन्होंने कहा उठो, बोला आपने तो, मैंने पहले बताया था आपको, आपने मुझे कहीं रखा तो फिर मैं वहाँ से नहीं लूँगा। तो उन्होंने कहा कि लघु शंका का वेग आया था। मैंने कहा आपको पहले बताया था मैंने कि अगर आप मुझे कहीं रखते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मुनि ने गोवर्धन को शाप दिया कि आप रोज एक सरसों के दाने के साइज से जमीन पे ढसोगे, यू विल सिंक इन द ग्राउंड एवरी डे बाय द साइज ऑफ मस्टर्ड सीड। तो ये सत्ययुग की बात है। तो पुलत्स्य मुनि निराश होकर चले गए, पुलत्स्य मुनि निराश होकर चले गए कि मैं क्या सोच कर आया था और मैं उनको अपने घर पे लेके नहीं गया। ये सत्ययुग की बात है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गोवर्धन को पता था कृष्ण भगवान द्वापर में आने वाले हैं, द्वापर युग में आएंगे तब मैं उनकी सेवा करूंगा, इसलिए वो वहां से वेट कर रहे थे कि कैसे जाना है मुझे। तो गोवर्धन को वहां से यहाँ लाने के लिए भगवान ने लीला किया और गोवर्धन का जो भक्ति है वो पुलत्स्य मुनि के योग बल से ज्यादा है। द पावर ऑफ भक्ति ऑफ गोवर्धन इज मोर देन योगिक पावर ऑफ द मुनि। दैट्स वाई मुनि गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अर्ज ऑफ यूरिन एंड गॉट डिफीटेड देयर ओनली एंड गोवर्धन सेटल डाउन हियर। तो उसके बाद में त्रेता युग में राम आए। अभी राम और कृष्ण में अंतर नहीं है, वो सेम पर्सनैलिटी है। तो जब राम भगवान सेतु बना रहे थे समुद्र में, रामेश्वर से लंका तक, तो बहुत टाइम कम था उसमें, बहुत फास्ट बना रहा था, 24 आवर्स बाय 7 दे वर मेकिंग। क्योंकि सीता देवी ने वहाँ पर एक अल्टीमेटम दे दिया था कि 1 साल होने के बाद में अगर आप नहीं आते हो तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी, यू हैव टू कम बिफोर दैट टू सेव मी। टाइम बहुत कम था, समुद्र में ब्रिज बनाना है, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है, फिर युद्ध करना है, फिर रावण को मारना है, फिर सीता को उठाना है, तो कितना टाइम लगेगा उसके अंदर ना। तो जितना कम टाइम लगेगा उतना अच्छा है। तो हनुमान जी इसलिए क्या कर रहे थे, आकाश में उड़ रहे थे और कहाँ कहाँ से बड़े बड़े पर्वत कहाँ मिल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ शॉर्ट शॉर्ट स्मॉल स्मॉल स्टोन्स, यू आर लुकिंग फॉर माउंटेन्स। सो माउंटेन डालेंगे तो पूरा जल्दी जल्दी लंबा लंबा डिस्टेंस कवर हो जाएगा ना। तो हनुमान जी आज रोमिंग अराउंड इन द स्काई, तो हिमालय से वो बड़े बड़े पर्वत को उठाकर डाल रहे थे। तो अचानक जब वो उड़ रहे थे तो उनको ये पर्वत नजर आया, बहुत लंबा और चौड़ा। तो ये थॉट कि एक ही को उठा लेते हैं तो लास्ट का पोर्शन जो बचा हुआ है वो हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर आए वो और उन्होंने देखा कि कितना बड़ा पर्वत है, इसलिए वो पर्वत यहाँ पर है समझो ऐसे। तो यहाँ से ऐसे जाने लगे, वो देखने लगे कितना लंबा पर्वत है। तो पर्वत वहाँ से बढ़ने लगा, वो आगे गए पर्वत आगे बढ़ने लगा। फिर वो इस तरफ आए तो यहाँ से पर्वत बढ़ने लगा। तब उनको समझ में आया कि ये बहुत कोई दिव्य चीज़ है, डिवाइन मटीरियल। तो उन्होंने प्रणाम किया, बोला हे पर्वत आप कौन हो बताओ, आपका परिचय दो। तो पर्वत ने बताया कि मैं गोवर्धन हूँ, द्रोण का पुत्र हूँ, आप मुझे क्यों उठा रहे हो। वो कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र सेतु बना रहे हैं इसलिए मैं आपको उठा रहा हूँ। तो तुरंत उठ से उठ गया। मैं आपको एक बताना भूल गया, जब पहले यहाँ पर आए तो उनको जल्दी भी था ना, वो विचार करने के मूड में नहीं थे, तुरंत उसको उठाने का कोशिश किया उन्होंने तो उठा नहीं पाए, एक हाथ से दो हाथ से पूरे बल से। फिर उसके आगे पीछे जाके देखा कितना दूर है, तो फिर उन्होंने बताया कि सेतु बंद करने के लिए मैं आपको उठा रहा हूँ। तुरंत उठ गए, जो पहले इतने बल से उठाने के लिए मुमकिन नहीं था, तुरंत उठ गए वो, आकाश में उड़े उसको लेके हनुमान जी। तो आकाशवाणी हो गई कि सेतु पूरा हो गया है, तो वापस नीचे आया और रख दिया इधर। तो गोवर्धन जी बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। इतना समय के बाद में प्रभु की सेवा करने का मौका मिल रहा था, वो भी खत्म हो गया। तो हनुमान जी उसका रोना देखकर बहुत प्रभावित हो गए, वॉज वेरी अमेज्ड टू सी द डिवोशन ऑफ गोवर्धन। इतना रोए वो कि द अपॉर्चुनिटी टू सर्व इज लॉस्ट, दैट इज हिज मिजरी। हम लोग कैसा करते हैं, जितना काम टालना है उतना अच्छा है, हाउ कैन आई अवॉइड माई वर्क। बट इधर गोवर्धन जी वेट कर रहे हैं सेवा करने के लिए, तो सेवा का मौका मिला इतने साल के बाद में और वो भी गया इसलिए रो रहे हैं। तो हनुमान जी ने पूरा रिपोर्ट दिया भगवान राम को, कैसा ऐसा पर्वत देखा मैंने, मैंने उसको उठाया और नीचे रखा तो इतना रोया। तो भगवान ने कहा को मेरा भक्त है और उसको जाके मैसेज देना, मतलब युद्ध के बाद में, कि मैं द्वापर युग में आऊँगा और 7 दिन 7 रात आपको सर पे उठा कर रखूँगा। आई विल लिफ्ट यू अबाउ माई हेड फॉर 7 days and 7 nights। और मेरे जितनी भी इंटीमेट लीला है, जितनी भी अंतरंग प्राइवेट लीला है, वो सब आपके आसपास में करूँगा। इसलिए भगवान ने अपने वादा को ध्यान में रखते हुए जब वो कृष्ण के रूप में आए भगवान, तो उन्होंने बहुत ही अपनी अंतरंग लीला जो है वो गोवर्धन के आसपास की है। हम लोग जानते हैं केवल भगवान ने गोवर्धन को उठाया, 7 दिन खड़े रहे, इतना ही जानते हैं, लेकिन गोवर्धन के आसपास में इतनी सारी जगह है जहाँ पर भगवान ने इतनी सारी लीला किया है। तो उसमें से एक क्षेत्र है कुसुम सरोवर। अभी गोवर्धन जो है ना ऐसा है, एक तरफ उसकी मतलब गोवर्धन जो है वो मोर के आकार में है, मोर के स्वरूप में है, ही इज़ इन द फॉर्म ऑफ पिकॉक। तो एक तरफ मोर का मुख है समझो, एक तरफ उसकी पूंछ है पिसारा है ना, और बीच में उसका टॉप टॉप बॉटम जो है, टॉप जो है वो बीच में है। और हम लोग अभी कहाँ बैठे हुए, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं गोवर्धन के पिकॉक के मुख के पास में बैठे हैं हम लोग। तो आगे 2 कुंड है, राधा कुंड श्याम कुंड। मैंने आपको कथा बताई थी ना, क्या कथा बताई थी बताओ। यस, एक बुल को भगवान ने मारा, उसका नाम था अरिष्टासुर। तो गोपियाँ बोली कि हम लोग आपके साथ में नहीं खेलेंगे। तो सारे होली प्लेसेस आ गए ना वहाँ पर, भगवान ने बंसी से बनाया और राजा रानी ने कंगन से बनाया। तो वो राधा कुंड श्याम कुंड जो है वो गोवर्धन की 2 आंखें बनाया गया है, और वो लास्ट जो है वो पूछरी यानी कि टेल। तो इस तरह से बीच में जगह हम लोग बस से आए ना, ऐसे लेफ्ट टर्न लिया ना, उसको कहते हैं घाटी। घाटी यानी गोवर्धन के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना हो तो बीच में रास्ते होते हैं बहुत सारे। इधर भी एक घाटी है, इधर भी एक घाटी है, उसके आगे भी दान घाटी है। घाटी का मतलब होता है कि गिरिराज गोवर्धन से यहाँ से वहाँ जाने का रास्ता। तो जो दान घाटी है वो उस पिकॉक की नेक मानी गई है, गर्दन कंठ, कंठ माना गया है, जहाँ पर आपका गिरिराज जी का मिष्ठान का भंडार है ना, सोन पापड़ी वाला, वो गिरिराज जी के कंठ पे है, और कुछ कुछ जगह जो है वो जमीन के अंदर है ऐसे गोल रूप में, और कुछ जगह वापस बाहर आती है। तो यहाँ पर गोवर्धन का दर्शन इतना नहीं होता है, आगे जाएंगे तो गोवर्धन फिर ऐसे बढ़ेगा, और नेक्स्ट स्पॉट में हम जाएंगे तो आपको सबसे टॉप मिलेगा, वो हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा। तो ये जगह जो है इसके ऐसा गोवर्धन है, और हम लोग ऐसे परिक्रमा करते हैं, लोग आप देखा ना रास्ते में देखा ना, तो वो ऐसे गोवर्धन को राइट में रखते हुए परिक्रमा करते हैं। दे डू सर्कमएम्बुलेशन कीपिंग गोवर्धन ऑन राइट साइड। तो ऐसे जाते हैं, और फिर एक जगह एंड होता है पूछरी, यहाँ पर उसका टेल है, फिर वो घूमते हैं, फिर ऐसा घूम के वापस आते हैं, और जहाँ शुरू किया वहाँ पर लौट के आते हैं, तो परिक्रमा पूरी हो जाती है। टोटल 22 किलोमीटर्स, फिर भी ये शॉर्ट परिक्रमा है, एक लंबी परिक्रमा है वो 40 किलोमीटर्स की है। तो भक्त लोग जो है बड़े प्रेम से गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। सबसे पहली परिक्रमा गोवर्धन की स्वयं भगवान ने की थी, ऐसा एक ही वस्तु है जिसकी परिक्रमा भगवान ने स्वयं की है। और मैंने आपको वहाँ पर कथा बताई थी, तीन पर्वत यहाँ पर बने हुए हैं, कौन से अनसूया की कहानी भूल गए आप? अनसूया की कहानी में क्या बताया था? ब्रह्मा, ब्रह्मा का पर्वत कहाँ पर है? वृषानी में है, फोर पीक्स आते हैं नो, फिर नंदीश्वर नंदगांव में, और गोवर्धन यहाँ पर है। ये किसका स्वरूप है? ये विष्णु का स्वरूप है। इसलिए हम लोग ब्रह्मा जी और शंकर जी के पर्वत पर चढ़ते हैं, लेकिन गोवर्धन पे चढ़ना मना है, नो बडी क्लाइम्स ऑन गोवर्धन। तो अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं जहाँ कुसुम सरोवर है, इधर भी रास्ता है, इधर भी गोवर्धन है, यहाँ से भी रास्ता है, ऐसे गोल घूम के हम लोग यहाँ आते हैं एकदम पॉइंट में। यहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड है, और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, समझ में आपको आया? ज्योग्राफिकली वी आर लाइक दिस। और ये रोज एक एक सरसों के दानों के साइज से ढसा हुआ पर्वत आज आपको दिख रहा है, तो ओरिजिनली कितना बड़ा होगा? ऐसे कहते हैं कि करोड़ों मील आकाश में ऊंचा था ये, करोड्स एंड करोड्स ऑफ मील्स हाई इन द स्काई। लेकिन सत्ययुग से यहाँ बैठे हुए हैं, शाप को प्राप्त करने के बाद में धीरे धीरे कम कम होते आज आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जब मैं 30 साल पहले यहाँ पर आया था तो जितना ऊंचा गोवर्धन था उतना आज नहीं है। 30 साल में तो कितने दिन हो गए ना, 30 × 365 डेज, एवरी डे वन मस्टर्ड सीड जोड़ेंगे फिर भी कुछ ना कुछ बनेगा ना उसका, इट इज़ कमिंग डाउन डाउन एंड डाउन। ऐसे कहते हैं जिस दिन गोवर्धन पूरा जमीन में धस जाएगा, दैट विल बिकम घोर कलियुगा, द वर्स्ट पीरियड ऑफ कलियुगा विल स्टार्ट, जब गोवर्धन पूरा जमीन में धस जाएगा। तब क्या होगा? गंगा जी सूख जाएगी, जमुना जी भी सूख जाएगी, गोवर्धन पूरा जमीन में धस जाएगा, और बद्रीनाथ केदारनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा। दैट टाइम इट विल बी द वर्स्ट पीरियड ऑफ कलियुगा विल स्टार्ट। उसको कितने साल बाकी है आज? उसको आज से 9,500 साल बाकी है, डोंट वरी। सो डू नॉट स्टे टिल दैट टाइम इन द मटेरियल वर्ल्ड। हाँ, आपको इसी जन्म में भगवान की भक्ति करके ऐसा योग्य बनना है जिससे आप इसी जन्म के एंड में भगवान के धाम में चले जाएं। डोंट वेट टू सी दैट वर्स्ट पार्ट ऑफ कलियुगा। उसमें पूरा वर्णन दिया है श्रीमद् भागवत में 11वें और 12वें स्कंद में, लास्ट पार्ट में कलयुग में क्या क्या होगा वो सब वर्णन दिया है। बहुत भयंकर है वर्णन, आप सुन नहीं सकते उसको, अभी वो सुनने का बताने का प्रसंग भी नहीं है, अभी और बताएंगे आपको। लेकिन आज भी जो चल रहा है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है, खराब ही चल रहा है, लेकिन तब बहुत ही भयंकर होगा। ऐसे बैठ के हम कथा नहीं कर सकते, इतनी भयंकर अवस्था होगी। तो एनीवे आपको इस जगह की कथा बताते हैं। जैसे हम लोग प्रेम सरोवर में गए थे तो वो किस में था? प्रेम वन में था, है ना। अभी हम लोग कुसुम सरोवर में आए, ये भी कुसुम वन में है, इसका अनेक नाम है, कुसुम वन, पुष्प वन, सुमन वन, ऐसे बहुत सारे वन। इस वन में राधा रानी कृष्ण भगवान के लिए फूल बिनने को आती है, ये बड़ा मशहूर वन है, इसमें बहुत तरह तरह के फूल खिलते हैं। राधा रानी अपनी सखियों के साथ में यहाँ पर कृष्ण के लिए फूल बिनने को आती है, यहाँ से फूल बिनती है, फिर जमुना जी में जाके धोती है, फिर जमुना जी धोने के बाद में उसकी माला बनाते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं, अलग अलग आइटम बनाते हैं उससे। तो एक दिन ऐसे ही भगवान, सॉरी, राधा रानी अपने फ्रेंड्स को लेकर यहाँ पर फूल बीन रही थी। हम लोग कैसे करते हैं, फूल बीनते हैं, कुछ बातें करते रहते हैं। आज ड्यूटी कौन सी है तुम्हारी, कब जाओगी, शाम को कहाँ जाना है, मार्केट में कब जाओगी, सब्जी लाना है कि नहीं आज, और फूल बीन रहे हैं। ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। जब फूल बीनते हैं तो पूरे माइंड बॉडी इंटेलिजेंस सब एकाग्र होकर फूल बीनते हैं। फुल कॉन्सेंट्रेशन एब्सॉर्प्शन इज देयर, मग्न होकर फूल बीनते हैं। तो ऐसे सब सखियाँ, राजा रानी, सब लोग सुंदर पुष्प वन में अलग अलग फूल बीन के इकट्ठा कर रहे हैं। उतने में वहाँ से माली आता है, माली आता है, तो माली आता है और डंडा बजाता है रास्ते पर ऐसा। तो डंडा आवाज़ सुनकर सखियाँ बोलते हैं, राजा रानी भागो भागो, माली आ रहा है, माली आ रहा है। तो सब लोग जो है जितना भी फूल बिना हुआ है वो इकट्ठा करते हैं, बांधते हैं अपने पल्लू में और भागने लगते हैं। राधा रानी ऐसे जगह पर रहती है जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं और बीच में फूल होते हैं। तो उसका ये है ना कपड़ा, ऐसे सब कांटा में छुपा हुआ है, यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ अटकता है, यहाँ निकालेंगे तो यहाँ अटकता है। तो वो सुन रही है, माली आ रहा है, माली आ रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रही है लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। सब सखियाँ भाग रही है, राधा रानी, श्री जी, भागो भागो, माली आ रहा है। और माली जो है ठाक 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 करके पास 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 आ रहा है। उसकी जो डंडे की आवाज़ है वो भी नज़दीक नज़दीक आ रही है। आप सोच सकते ना, पहले दूर से आवाज़ आ रही थी, बाद में पास से आवाज़ आ रही है। सब सखियाँ भाग रही है, पहले ज़ोर से पुकार रही थी, पास पास से ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, अभी दूर दूर से पुकार रही है तो कम कम आवाज़ आ रही है, लेकिन वो पुकार रही है, भागो भागो भागो। लेकिन सब सखियाँ भाग जाती है, राधा रानी भाग नहीं सकती, अटकी हुई है वहाँ। तो माली सामने आके खड़ा हो जाता है, इसे कमर पे हाथ रख के, मतलब क्या, बिना परमिशन के हमारे बाग बगीचे में आकर फूल चराते हो? तो डंडा रख के खड़े हो जाते हैं और बड़ी बड़ी आंखें करके राधा रानी को घूर घूर कर देखता है। राधा रानी, यू कैन अंडरस्टैंड ना, पसीना आता है उसको डर के मारे, क्या करूँ मैं, भागू कहाँ से, फूल सब गिर रहे नीचे, यहाँ वहाँ, डर के मारे सोच रही भागू कैसे, नहीं भागू कैसे करूँ। उतने में वो जो गुस्सा आया, वो माली ना, उसकी आंखें लाल लाल है, क्रोध से देख रहा है, सब सखियाँ भाग गई है, अकेली राजा रानी खड़ी है। तुरंत हंस देता है वो, सडनली स्माइल्स, वो फेटा उतर देता है माली का। वो कौन था? कृष्णा। वही तो माली बनकर आए थे भेष बदल कर। तो राधा रानी बोला, ओह मैं तो डर गई थी, बोला अभी क्या होगा, ओ तुम थे, ओ रिलीव्ड। फिर पूछती है, तुमने आज ऐसा क्यों किया? तुमने बताया मुझे आज आपको अकेले मिलना था, इसलिए मैंने सब गोपियों को भगाने का प्लानिंग इस तरह से किया। अभी इस तरह से सब गोपियां भाग गई ना, अभी मैं आप और मैं अकेले हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़े फूल तो सब माटी में गिर गए आपके डर के मारे, अभी इसको धोना पड़ेगा। तो कृष्ण पूछते हैं कि रोज क्या करते हैं आप? तो रोज हम लोग ये फूल लेके जमुना जी में जाते हैं। बोले चलो जमुना जी जाएंगे और फूल धोएंगे। नहीं नहीं, हमको आपको साथ में लोग देखेंगे तो घर में कंप्लेंट जाएगी ना कि ये अकेले में कृष्ण के साथ घूमती है। तो कोई बात नहीं, हम जमुना जी को यहाँ बुलाएंगे। जैसे वो बंसी से कुंड बनाया था ना, तो उन्होंने क्या बोला था कि आपको दुनिया भर के सारे होली प्लेस में जाके स्नान करना पड़ेगा। बोले कोई जरूरत नहीं, मैं उनको इधर ही बुलाता हूँ सब लोग। वैसे जमुना जी को इधर बुलाऊंगा। वो तुरंत आह्वान करते हैं तो जमुना जी यहाँ प्रकट हो जाती है। तो ये जमुना जी का जल है, ये जमुना जी यहाँ पर आई है भगवान की इच्छा से। और एकांत में इस पुष्प वन में, कुसुम वन में, भगवान ने और राधा रानी ने उन फूलों को धोया है। अब आमतौर पर क्या होता है, ये जो फूल धोते हैं, वो माला बनाते हैं, उससे राधा रानी कृष्ण के लिए माला बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सुंदर लीला हुई है। जब भगवान ने राधा रानी के साथ में उन फूलों को धोया है, तो राधा रानी के लिए भगवान ने माला बनाई है फूलों की, और अपने हाथ से राधा रानी के बाल संवारे हैं और माला बनाकर उनके बालों में श्रृंगार किया है। यहाँ पर ऑपोजिट लीला है। हर जगह पर श्री कृष्ण भगवान के लिए माला बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस कुंड के किनारे बैठकर पहले कंघे हाथ में लेकर राधा रानी के बालों को भगवान ने संवारा है, फिर उसमें फूलों का श्रृंगार किया है। और राधा रानी कैसे है, ऐसे आईना लेके बैठी हुई है। आप लोग की मम्मी जब बाल बनाती है ना, तो आप बैठते ना ऐसे, मम्मी हळू जरा हळू हळू किती जोरात करते, असे नको करू, इथे भांग पाड, इथे नको भांग पाडू, ऐसा देखते ना। तो आप लोग क्या करते हो, सब लोग आईने में देखते रहते हो, किसको देखते हो, अपने आप को। लेकिन राधा रानी मायना आईना अपने आप को देखने के नहीं पकड़ा है उसने। राधा रानी कभी भी कृष्ण को देखे बिना रह सकती नहीं है। अभी अगर बाल बनाना है तो आपकी पीठ होगी ना उसकी तरफ, तो चेहरा कैसे देखेंगे। तो राधा रानी अपने चेहरे नहीं देख रही है, राधा रानी ऐसे देख रही है, जो पीछे जो बाल बना रहा है ना उसको देख रही है। तो आईने के अंदर किसका चित्रपट है, श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण मेरे बाल संवार रहे हैं तो उसको देख रही है वो। यही भक्ति है। हम लोग हमेशा अपने आप को देखना चाहते हैं हर चीज़ में, है ना। हाउ डू आई लुक, मैं कैसे देख रहे हैं। लेकिन राधा रानी का भाव ये नहीं है, वो कृष्ण को देख रही है। यही भक्ति है। हमको यही समझना है लाइफ में कि सब कुछ जो है वो भगवान के लिए है। एवरीथिंग इज फॉर द लॉर्ड। तो ये जो मंदिर है देखो, यहाँ पर वो ग्रीन कलर का दिखता है ना जगह, वो अपना ही मंदिर है। तो प्रभु जी उसी मंदिर से है, वो राधा वन विहारी जी का मंदिर है। उसमें ऐसा सुंदर दर्शन है, आप बराबर देखना, छोटी सी मूर्ति है, एकदम छोटी सी। उसमें कृष्ण ऐसे ऊपर बैठे हुए हैं जैसे जो मैं ऐसा बैठा हूँ, और नीचे के लिए राधा रानी बैठी है, और कृष्ण के एक हाथ में कंघी है और एक हाथ में उसने बाल पकड़े हैं, और राधा रानी के एक हाथ में ऐसा आईना है, और राधा रानी आईने में देख रही है, और नीचे राधा रानी बैठी है, इधर एक हाथ में बड़ी कंघी पकड़ी है, एक हाथ में बाल पकड़े हैं। ऐसा यहाँ पर दर्शन है। उसको कहते हैं वन विहारी, राधा वन विहारी कुसुम सरोवर। तो यह भी जब यमुना आई तो ये सरोवर बना, विशाल सरोवर। इसका नाम क्या है, कुसुम सरोवर। हरे कृष्णा। तो ये छतरी जो है ये जयपुर के राजाओं ने बनाई है, इसको हवा महल कहते हैं। हवा महल का मतलब होता है ऑल फोर साइड ओपन, जब हवा आती है तो उसमें बैठ के वो हवा चमारा जा गई।